زين.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرفت قرآن کی جلد نمبر 3 میں سے، اور جو ابھی آیات تلاوت کی گئیں، آیات نمبر 54 اور 55 ہے. تو ان کے معارف و مسائل ہم پڑھ رہے تھے، جمعہ کی مجلس میں بھی اس کے اوپر ہی درس چل رہا ہے. تو اللہ رب العزت ان میں فرماتے ہیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے، وَإِذَا جَاءَكَ، جب آپ کے پاس آئیں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو کہ ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، ہماری آیات پر اعتماد یعنی ان کو سچا مانتے ہیں، ان کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرتے، شک نہیں کرتے یا ان کا انکار نہیں کرتے، وہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں، فقل، پس کہہ دیجئے، سلام علیکم، کہ تم سب کے اوپر سلامتی ہے، یعنی جتنے لوگ ایمان لائے ہو میرے اوپر، میری باتوں پر، جو میرے واسطے سے تم تک نشانیاں پہنچیں، اور ان کی روشنی میں جو تم اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانیوں کو دیکھتے ہو، ان کو اللہ سے ہی جوڑتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہوا یؤمنون بآیاتنا کا، کہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں ہی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو دیکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کہہ دیجیے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہے. تو اب اس میں کون لوگ شامل تھے؟ سارے صحابہ کرام اور صحابیات اس کے اندر شامل ہو گئی، کہ ان سب کے اوپر سلامتی ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے لکھ دیا اپنے جان پر، اپنے نفس پر رحمت، ٹھیک ہے؟ تمہارے رب نے لکھ دیا اپنے اوپر، یعنی اپنے اوپر واجب کر لیا. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی دوسرا واجب نہیں کر سکتا کچھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر جو چاہے واجب کر سکتے ہیں. واجب کرنے کا مطلب یہاں پر کیا؟ کہ جو چاہے فیصلہ کر سکتے. واجب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گویا کہ اپنے آپ پہ جیسے ہم کر لیتے ہیں، کوئی نظر مان لیتے ہیں، یا کوئی اپنے اوپر جو ہے وہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی نظر وظر ماننا نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ فرما، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ فرمانا، یہی مطلب ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہارے لیے تو رحمت ہے. انہ من عمل منکم سوءً بجہالت، اگر تم میں سے کوئی جہالت کی وجہ سے برا کام کر جائے گا، ثم تاب من بعده، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے گا، واصلح، اور سدھار لے آئے گا، بہتری لے آئے گا اپنے عمل میں، فانه غفور رحیم، بس وہ غفور ہے اور رحیم ہے. تو اس کی تفسیر ہم پیج نمبر 338 کے اوپر پڑھ رہے تھے، جو صفحہ آپ کے سامنے شیئر بھی ہوگا اسکرین پر. تو اسی یہی سے ہم اس کو آگے چلاتے ہیں کہ دوسرے جملے میں کتبہ ربکم، ایکسکیوز می، دوسرے جملے میں کتبہ ربکم علی نفس الرحمہ میں اس احسان پر اور مزید احسان و انعام کا وعدہ اس طرح بیان ہوا. ایک تو احسان کیا نا، سلام علیکم، کہ بھائی اللہ کی طرف سے تم پر سلام آ رہا ہے. پھر اس کے اوپر مزید احسان اور انعام کا وعدہ اس طرح سے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے فرما دیجئے तुम्हारे रब ने रहमत करने को अपने जिम्मे लिख लिया है, इसलिए बहुत डरे और घबराए नहीं। मतलब क्या कि मायूसी का शिकार ना हो, ये नहीं कि बस कुछ भी जो है वो करना बेकार है, बस मैं तो इतना बुरा हूं कि मेरा अमल ही जो है ना उसका करने का फायदा ही कोई नहीं है, तो अमल करना छोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि डरना वरना छोड़ दें, खशियत खत्म कर दें, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इतना डर को अपने ऊपर गालिब ना कर लें कि जिससे मायूसी हो जाए। ठीक है, या बस अब तो कोई फायदा नहीं है, अब तो बस हमने तो जहन्नुम में ही जाना है, कुछ भी कर लोगे ना तो बस नहीं बच सकते, ये इसका मतलब है। इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि अब डरना वरना बिल्कुल छोड़ दें और बस जो है ना वो मजे में, हाँ भाई कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला तो माफ करने वाले हैं, अल्लाह ताला तो जो है ना वो रहीम है करीम है, कुछ नहीं होता, अब तो मैं जी भर के अल्लाह ताला के साथ बदतमीजी करूंगा, है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा हो तो उसके साथ जो है ना वो कहते हैं यार उसको थोड़ी सी मेरी छोटी सी बदतमीजी से क्या फर्क पड़ता है, तो वो अपने कामों में मगन है, उसको क्या कि मैं उसके काम में क्या खराबी कर रहा हूँ या मैं उसके जो है वो दूसरों के साथ क्या छेड़छाड़ कर रहा हूँ, राइट, या मैं उसके साथ क्या जो है वो यानी उसकी अहमियत को किस तरह से कम कर रहा हूँ, नहीं वो तो अपने कामों में मगन है, उसको तो फिक्र ही कोई नहीं, उसको तो जाहिर है इतना वक्त ही नहीं कि मेरी तरफ तवज्जो करे, है दुनिया में तो ऐसे ही होता है ना कि दुनिया वाले कितनी बड़े हो जाएं लेकिन उनके पास 24 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं होता, ठीक है ना, कि वो अपनी सारी रियाया के ऊपर तवज्जो दें, उनके पास इतना दिमाग ही नहीं होता, कितना बड़ा बादशाह हो जाए, कितना बड़ा फिरौन हो जाए या कितना बड़ा ही नेक बादशाह बन जाए, उसके पास इतना दिमाग नहीं होता, उसके पास इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो अपनी एक एक रियाया की एक एक बात को देखे और उसके साथ जो है वो उसके हर हर फेल के मुताबिक और हर हर सोच के मुताबिक उसका हिसाब करे। कोई बादशाह ऐसा नहीं हो सकता दुनिया के अंदर, ठीक है, आज भी बादशाह लोग जो है वो ऐसा नहीं कर सकते, आज भी जो बड़े बड़े जो बादल ताकतें हैं वो भी ऐसा नहीं कर सकती अपनी सारी की सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद। हालांकि अब इनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये हमारी एक एक हरकत को नोट कर सकते हैं, ठीक है, हमारी एक एक हरकत को नोट कर सकते हैं, हमारी एक एक बोल बोल को जो है ना ये नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम सबके पास सेलफोन है, हम सबके पास सेलफोन है, और ये सेलफोन जो है ये इनका भेदी है, ये इनका जासूस है, हर सेलफोन जो है वो इनके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होता है, जो आप सेलफोन पे करेंगी जो आप कहेंगी वो आपका सेलफोन सुन रहा होता है, तो आपका सेलफोन सुन रहा होता है, उसके अंदर ये सारे के सारे एजेंट्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस आपके सेलफोन के अंदर आपके इल्म के बगैर मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है इनके पास, और वो सब जाता है इनके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और उस कंप्यूटर सिस्टम को इनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स हैं वो वॉच कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद जो है ना वो हर एक के ऊपर अमल नहीं कर सकते, अंधे हैं गूंगे हैं बहरे हैं, ये डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा इनसे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये इस खुशफहमी में मुबतला ना रहे कि आप जो है ना वो छुपे हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि ये बातिल हुक्मरान जो हैं ये अंधे बहरे गूंगे हैं इस वजह से कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम जो है ना ये अल्लाह ताला से ज्यादा बढ़ के नहीं, ठीक है, अल्लाह ने इनको गूंगा बना दिया है, बहरा बना दिया है और अंधा बना दिया है, लेकिन उनके लिए जिनको के अल्लाह ताला बचाना चाहते हैं इनसे, जिनको नहीं बचाना चाहते उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह हम दुनियावी ताकतों के बारे में ये बेफिक्र हो जाते हैं कि वो उनको क्या पता, वो तो इतने लोग पहले ही हैं उनके उनको बिजी रखने वाले, ये मामला अल्लाह का नहीं है, अल्लाह ताला को कोई भी जो है ना वो ओवर बिजी नहीं कर सकता, ओवर ऑक्यूपाइड नहीं कर सकता, अल्लाह एक एक मखलूक, हम इंसान तो क्या अल्लाह ताला चूटियों और बिलों में रहने वाले जो है वो कीड़े मकोड़ों और समंदर में रहने वाली मछलियां, एक एक का अल्लाह ताला को सब कुछ पता है और सब हर एक मखलूक को अल्लाह ताला डायरेक्टली हैंडल कर, डायरेक्टली हैंडल कर, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, किसको क्या तकलीफ पहुंच रही है, किसको क्या राहत पहुंच रही है, किसकी क्या जरूरत है, अल्लाह ताला सबको एक साथ हैंडल करते हैं। तो उससे जो है ना वो हम बेखौफ नहीं हो सकते कभी भी, यानी ये नहीं हो सकता कि हम डरे नहीं और घबराए नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि मायूस ना हो जाए और अमल ना छोड़ दें मायूस होकर के। इस जुमले में अव्वल तो रब का लफ्ज इस्तेमाल फरमाकर मजमून आयत को मुदल्लल कर दिया कि अल्लाह ताला तुम्हारा पालने वाला है, और जाहिर है क्योंकि पालने वाला अपने पाले हुए को जाया नहीं करता है। जुमे के बयान के अंदर इस बात को भी समझाया था कि इस जुमले का मतलब भी ये ना समझ लिया जाए कि चूंकि अल्लाह ताला वो काफिर को भी पालता है, इसलिए काफिर को भी अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो ईसाई और यहूदी को भी पालता है और हिंदू को भी पालता है, इस वजह से वो उसको भी जाया नहीं करेगा, और जाया नहीं करेगा मतलब क्या कि उसको जहन्नुम में हमेशा हमेशा कहने नहीं डालेगा, है ना। इस जुमले से तो यही लगता है ना कि अल्लाह ताला तो सबको पालते हैं, इसका तो कोई इनकार नहीं, ये तो नहीं है कि अल्लाह ताला काफिर को नहीं पालते, सिर्फ मोमिन को पालते हैं, अल्लाह ताला तो काफिर को भी पालते हैं, ठीक है। तो क्या काफिर को फिर अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में नहीं डालेंगे क्योंकि वो पालते हैं उसको? बिल्कुल भी नहीं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला ने बता दिया है कि मैं शिर्क को माफ नहीं करूँ और गुनाहों के ऊपर सजा भी मैं दूंगा, मैं यअमल सुअ युज्जा भी। और अल्लाह ताला ने जो इतने सारे वाकयात सजाओं के पहले ही बयान कर दिए, फलाने को ऐसे सजा मिली, फलाने को ऐसे सजा मिली, फलाने को ऐसे सजा मिली, तो वो सारे भी वही थे जिनको अल्लाह ताला पालते थे, राइट। नूह अलैहि सलाम की कौम जो अजाब का शिकार हुई उसको भी अल्लाह ही पालता था, हूद अलैहि सलाम की कौम, कौम आद, कौम समूद, ठीक है, इन सबको अल्लाह ताला पालता था। लेकिन ईमान वाले को तसल्ली देने के लिए ये तरीका इख्तियार किया जा रहा है कि तुमको अल्लाह ताला ने पाला है। क्या मतलब पाला है? यहाँ पर ईमान वाले को वो खाना पीना दे के पालना मुराद नहीं है, क्योंकि खाना पीना तो अल्लाह ताला काफिर को भी देते हैं, तो ईमान वालों को क्या मतलब है पालने का? कि तुम्हें पाला है तो अब तुम्हें जाया नहीं करेगा। क्या मतलब? कि तुम्हें हिदायत दी है, तुम्हें हिदायत अता फरमाई है, तुम्हें जो है वो ईमान की तौफीक अता फरमाई है, नबी अलैहिस्सलाम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सोहबत अता फरमाई है, ये पालना है। मैंने तुम्हें रूहानी तौर पर पाला है, और रूहानी तौर पर मैं जिसको पालता हूं ना, मैं उसको जाया नहीं होने देता, ठीक है। अल्लाह ताला की ये कुदरत है, अल्लाह ताला की शान है, जिसको चाहे हिदायत दें, जिसको ना चाहे ना हिदायत दें, हम कौन होते हैं उसके ऊपर इतराज करने वाले। तो अल्लाह ताला तुम्हारा पालने वाला है, और जाहिर है कि कोई पालने वाला अपने पाले हुए को जाया नहीं किया करता। फिर लफ्ज रब ने जिस रहमत की तरफ इशारा किया था उसको सराहतन भी जिक्र फरमा दिया, और वो भी इस उनवान से कि तुम्हारे रब ने रहमत करने को अपने जिम्मे लिख लिया है, और जाहिर है कि किसी शरीफ भले इंसान से भी वादा खिलाफी सादर नहीं होती तो रब्बुल आलमीन से कैसी हो सकती, खुसूसन जबकि इस वादे को बसूरत मुआहिदा लिख लिया गया, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने वादा किया, अनकंडीशनल वादा नहीं किया, गैर मशरूत वादा नहीं किया, बल्कि ये मशरूत वादा है, कंडीशनड वादा है, ठीक है। वो क्या कि जिन्होंने एतमाद किया मेरे नबी पर उनके साथ ये वादा है, तो ये कंडीशन हो गई ना, ये शर्त हो गई ना। जिन्होंने एतमाद नहीं किया, अपनी चलाते रहे, अपने आप को ज्यादा अल्लामा और अफलातून समझते रहे, उनके साथ ये वादा नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अल्लाह ताला के बहुत सारे वादे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला के अपने अल्फाज में वो वादे मौजूद हैं, लेकिन वो सारे वादे मशरूत हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं अपनी नियमतों को तुम पर बढ़ा दूंगा, वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम कुफर करोगे तो मेरा अजाब शदीद है। अगर के लफ्ज के साथ दोनों बातें, दोनों वादे अगर के लफ्ज के साथ, ठीक है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम,
अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, क्या मतलब अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उम्मीद है सबको इसका मतलब पता होगा कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे का मतलब अल्लाह के दीन वालों की मदद करोगे, अल्लाह के दीन के जो मेहनत करने वाले, उन्होंने जो निजाम बनाए हुए हैं, छोटे छोटे से निजाम बनाए हुए हैं सबने अपने अपने दीन की मदद करने के लिए, दीन का बोझ उठाने के लिए, अगर तुम उनकी मदद करोगे यंसुरकुम, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कंडीशनल वादा है ये, मशरूत वादा है ये, लेकिन वादा अल्लाह ही का है। क्या मतलब? कंडीशन बेशक है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर हम कंडीशन पूरी करेंगे तो अल्लाह अपना वादा पूरा करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम तो कंडीशन पूरी करें अल्लाह वादा पूरा ना करे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक आम शरीफ भला इंसान अपने वादे को पूरा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वही बात कि जब किसी को वादे पर एतमाद ना हो तो फिर वो तवज्जो ही नहीं देता इस बात पर कि यार मैं अपनी तरफ से वादा पूरा करने की तो कोशिश करूँ ना, कंडीशन पूरी करने की तो कोशिश करूँ ना, मैं अपनी तरफ से कंडीशन पूरी करने की तो कोशिश करूँ ना, तो वो जात तो अपना वादा पूरा करेगी, लेकिन हम नहीं मानते इस बात। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने मसाइल लेकर के आते हैं, खुसूसन औरतें घरों के मसाइल लेकर आती हैं, मैसेज करती हैं, अच्छा जी ये जो है ना वो, उनको किसी ने बता दिया होता है कि ये जो है ना वो अजदवाजी मामला पे बात करते हैं, समझाते हैं लोगों को, व्हाट्सएप के ऊपर जवाब भी दे देते हैं, है ना, बाकी पीर लोग वगैरह तो उनके पास टाइम नहीं होता जवाब देने का, तो ये इनके पास टाइम है ना, ये जवाब दे देते हैं, फारिग किस्म के इंसान है, ठीक है, तो ये जवाब दे देते हैं, तो चलो जाओ जा करके अपने मियाँ बीवी के जो झगड़े हैं ना वो उनके सामने बयान करो। तो जब वो इस किस्म के झगड़े बयान करती हैं अपने शौहर के साथ, या कोई अपनी सास के साथ झगड़ा बयान करती है, कोई अपनी बहू के साथ झगड़ा बयान करती है, कोई अपनी औलाद के साथ अपना झगड़ा बयान करती है ना, औलाद के साथ भी तो झगड़े होते हैं ना, जब औलाद को आपने बिगाड़ा होता है तो वो बड़े होकर के आपके साथ झगड़ती है, ठीक है, वो आपके लिए सुहाने रूह बनती है, ऐसी भी बहुत होती हैं औलाद के झगड़े भी बयान करती हैं। तो फिर हम उनको जब कहते हैं कि भाई आप अल्लाह के दीन की मदद करें, ठीक है ना, आप अल्लाह के दीन की मदद करें, आप कैसे अल्लाह के दीन की मदद करेंगी, दावत तो तबलीग करना शुरू कर दें, नहीं, ये नहीं कहते कि आप निकल जाएं दावत देने के लिए लोगों को, नहीं, अल्लाह के दीन की मदद एक औरत कैसे कर सकती है, चले आप बता दें, अल्लाह के दीन की मदद एक औरत कैसे कर, हर औरत कैसे कर सकती है अल्लाह के दीन की मदद, जी हर औरत जो अपनी सास का झगड़ा लेके आती है, अपने शौहर के साथ झगड़ा लेके आती है, अपनी औलाद के साथ, बहू के साथ झगड़ा लेके आती है, उसको जब हम कहते हैं कि आप अल्लाह के दीन की मदद करें, तो हमारा हम असल में उसको क्या कहते हैं, ये तो हम आपको समझाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन आप बताएं हम उनको क्या कहते हैं, आप में भी होंगे बहुत सी इस तरह की, क्या है अल्लाह की दीन की मदद जो कि हर औरत कर सकती है, अगर वो काम कर ले तो फिर अल्लाह ताला की मदद आएगी, उसका शौहर भी दुरुस्त हो जाएगा, अल्लाह ताला उसके शौहर को भी ठीक कर देंगे, तौअन ओ करहन उसको ठीक कर देंगे, ठीक है, सास को भी ठीक कर देंगे, बहू को भी ठीक कर देंगे, और आपको भी ठीक कर देंगे, तौअन ओ करहन। तो हर औरत कैसे अल्लाह के दीन की मदद करे, हुकूक अदा करके, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त जवाब दे दिया आपने, अल्लाह का शुक्र अदा करके दीन को समझे और अपनी जिंदगी में दीन अप्लाई करें, एग्जैक्टली, ठीक है ना, ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव उसम का जवाब है, जो अपना 5 फिट का जिस्म है ना, अपना 5 फिट का, 4 फिट का, किसी का 6 फिट का, किसी का 4.5 फिट का, इतना सा जो एक अल्लाह ताला ने दिया है ना अपना वजूद, उसमें अल्लाह के दीन की मदद करें कि अल्लाह के दीन को उस छोटे से वजूद में लेकर के आए, ये अल्लाह के दीन की मदद होगी जो कि हर औरत कर सकती है, ठीक है, हर औरत ये काम कर सकती है, उसका अपना जिस्म है ना, किसी और का तो जिस्म नहीं है, किसी और का तो वो नहीं है, अपना है ये, इसमें तो वो कर सकती है, वो इस पर अल्लाह के दीन की मदद करेगी, अल्लाह ताला की मदद आएगी, ठीक है, तो ये अल्लाह के बात है, लेकिन जब इस तरह की आती है ना, अक्सर बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल उनका हम कहते हैं भाई दीन सीखो, क्लासेस सुनो, कुरान की तफसीर से जुड़ो। नहीं, मुझे तो बस आप कोई हल बताएं, या तो कोई वजीफा, जादू जादू टोना मांगने के लिए आती है ना जादू टोना, या कोई बस ये है कि आप मेरे आंसू पोंछते रहे बैठ करके, राइट? या तो आप मुझे कोई वजीफा बता दें, शोहर को राम करने का वजीफा, सास को जेर करने का वजीफा, या बहू को जो है वो काबू करने का वजीफा बता दें आप मुझे, या औलाद को पता नहीं क्या, औलाद के बारे में क्या क्या काबू करने का, औलाद आप बस मेरा दुखड़ा सुनते हैं, आप मेरा दुखड़ा सुन लें, आप मेरे आंसू पोंछ दें, हमारे पास और कोई काम नहीं रहेगा आपके आंसू पोंछने के अलावा, दुखड़ा सुनने के अलावा। चलो कभी किसी के साथ जो है थोड़ा सा सबर करना पड़ जाता है, लेकिन ये हल तो नहीं होता ना, हल तो अल्लाह ने करना है ना। हम जो है वो दूसरे घर में बैठ करके या कई 100 मील दूर बैठ करके क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे यार, कौन इंसान क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, लेकिन अल्लाह की हमने माननी नहीं है, अल्लाह के वादों पे हमें भरोसा नहीं है, राइट? अल्लाह की बात को हमने सीखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, तो फिर कर लो जो करना है, कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है? तो अल्लाह के वादे जो है ना ये असल चीज है, हमने उनको खेल बनाया हुआ है, और फिर उसके बाद शोर मचाते हैं। सही बुखारी मुस्लिम मुसनद अहमद में बरवायत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन मजकूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात को पैदा फरमाया और हर एक की तकदीर का फैसला फरमाया, तो एक किताब में जो अर्श पर अल्लाह ताला के पास है ये लिखा कि इन्ना रहमती ग़लबत ग़ज़बी, यानी मेरी रहमत मेरे गुस्से पर ग़ालिब है, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने वहां पे लिख लिया लोहे महफूज में, तो हमें क्या फायदा इससे, हमें तो नहीं पता चलता कि लोहे महफूज के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो फिर लिखने का फायदा क्या, हमारे लिए क्या फायदा है इसका? नहीं, अल्लाह ताला ने सिर्फ लोहे महफूज में लिख करके छुपा नहीं दिया इस बात को, बल्कि अपने कुरान मजीद में भी इसी बात को थोड़े से दूसरे अल्फाज में बयान फरमाया, इन्ना रहमती वसअत कुल्ल शय, मेरी रहमत हर चीज के ऊपर वसी है। तो कुरान मजीद में भी ये अल्फाज अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए, और फिर अपने नबी अलैहिस्सलाम को भी बतला दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से कि आप भी बता दें कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है अपने पास, ये बात मैंने ऊपर लिखी हुई है, इन्ना रहमती गलबत गौबी, यानी छुपा के नहीं रखा इस वाले फैक्ट को, ठीक है? क्यों बताया हमें, कुरान में बताया, हदीस मुबारक में हमें बताया, ताकि हम मायूस ना हो जाए, ठीक है? हजरत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने तौरात में ये लिख दी लिखा देखा। अच्छा, इसके ऊपर एक और बात याद आई कि हम मायूस ना हो जाए, ये तो हो गई ना कि भाई अपने अमल के बारे में मायूस ना हो जाए, कि अपनी जात से जो हम इबादत करते हैं हम मायूस ना हो जाए कि जी मैं तो इतना गंदा हूं, इतना बुरा हूं, तो अब इबादत करने का फायदा कोई नहीं, ठीक है? तो छोड़ दिया अपनी इबादत करनी, मायूस हो गए, नहीं, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है और हमें बताया भी है कि मैंने ये लिखा हुआ है, फैसला किया हुआ है कि मेरी रहमत जो है ना वो गालिब रहेगी, तुम अमल करते रहो, तुम इबादत करते रहो, तुम नेकी इख्तियार करते रहो, तुम्हारी नेकी जाया नहीं करने, जाया नहीं होने दूंगा। एक दूसरे लेवल की नेकी होती है जो आप दूसरों की इस्लाह की मेहनत करते हैं, जब ऊपर से आपके बड़े आपको हुक्म देते हैं कि अब आप दूसरों की इस्लाह की मेहनत करें, तो ये भी एक नेकी होती है, दूसरों की इस्लाह की मेहनत। लेकिन जब आप दूसरों की इस्लाह की मेहनत करते हैं तो आपको जूते खाने पड़ते हैं, राइट? कभी फिजिकल जूते खाने पड़ते हैं, कभी जुबान से जूते खाने पड़ते हैं, कभी व्हाट्सएप पे जूते खाने पड़ते हैं, राइट? तो वर्बल जूते भी होते हैं और रिटन जूते भी होते हैं और फिजिकल जूते भी होते हैं, हर किस्म के जूते मिलते हैं, ठीक है? और फिर ये भी होता है कि आप किसी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं लेकिन वो सुन के नहीं दे रहा, वही अपनी जो है वो पुरानी राग अलापे चला जा रहा है, अपनी पुरानी वही गंध के अंदर लगे हुए, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ा, और बहुत ही यानी नो रिस्पॉन्स किस्म का एक एटीट्यूड है, ठीक है? ठीक है, आपको बहुत बुरा भला नहीं कह रहा, आपके साथ जो है वो बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन तब्दीली नहीं आ रही, ठीक है, तो उस पर भी मायूसी हो जाती है और फिर इंसान जो है वो अपना काम करना छोड़ देता है कि भाई ये तो किसी के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई बात ही नहीं सुन रहा, कोई तब्दीली नहीं हो रहा, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो चलो मायूस हो गए, काम करना छोड़ दिया। नहीं, अल्लाह ताला की रहमत वसी है अपने गुस्से के ऊपर, अल्लाह ताला की रहमत गालिब है, तुम अपना काम करते रहो, तुम्हें तो यकीनन फायदा होगा ही, अगर तुम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे होगे तुम्हें तो यकीनन फायदा हो गई। और दूसरा यह है कि अगर वो लोग कम से कम तुम्हारी बात को सुन रहे हैं और इनकार नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी गलतियां कोताहियां भी अल्लाह ताला दरगुजर फरमा देंगे, क्योंकि वो रहमत वाले हैं, मानने वालों को माफ कर देते हैं, गलती करते हैं तो माफ करते हैं ना फिर हम, राइट? यानी हम गलती करते हैं तो अल्लाह ताला माफ करेंगे, अगर हम गलती ही नहीं करेंगे तो फिर माफी किस बात की, माफी तो मिलती ही गलती पर है, तो गलती का कोई मसला नहीं है, ठीक है तुम अपना काम करते रहो, गलती को हम माफ कर देंगे। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने तौरात में ये लिखा देखा है कि जब अल्लाह ताला ने आसमान जमीन और उनकी सारी मखलूकात को पैदा फरमाया तो सिफत रहमत के 100 हिस्से करके उसमें से एक हिस्सा सारी मखलूकात को तकसीम कर दिया, और आदमी और जानवर और दूसरी मखलूकात में जहां भी कोई असर रहमत का पाया जाता है वो उसी हिस्से तकसीम शुदा का असर है। यानी दुनिया में जितनी मोहब्बत और उल्फत और रहमत नजर आती है ना, जैसे कि माँ बाप की रहमत जो है वो औलाद के लिए होती है, चाहे इंसानों में हो चाहे जानवरों में हो, वो अल्लाह ताला की रहमत का सिर्फ एक हिस्से की तकसीम हुई हुई है, माँ बाप और औलाद में, भाई बहनों में, शोहर बीवी में, आम रिश्तेदारों में, पड़ोसियों, दूसरे दोस्तों में, जो बाहमी हमदर्दी और मोहब्बत और रहमत के ताल्लुकात मुशाहदा किए जाते हैं वो सब उसी एक हिस्से रहमत के नताइज हैं, बाकी 99 हिस्से रहमत के अल्लाह ताला ने खुद अपने लिए रखे हैं, यानी कयामत के दिन के लिए रखे हैं। अपने लिए रखे हैं का मतलब कि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, अभी सेव करके रखे हुए हैं, किस दिन के लिए सेव करके रखे हुए हैं, कयामत के दिन के लिए सेव करके रखे हैं। और बाज़ रवायात में इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की हैसियत से भी रिवायत किया गया है, यानी एक तो हो गया ना सलमान फारसी रहता ने फरमाया, तो उसको कहेंगे इसराइली रिवायत कि तौरात में लिखा हुआ देखा उन्होंने, लेकिन हदीस नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में भी मौजूद है यही मज़मून, एक हिस्सा जो है वो इस दुनिया में बांटा हुआ है और 99 हिस्से जो है वो आखिरत के लिए रखे हुए हैं। इससे इंसान कुछ अंदाजा लगा सकता है कि अल्लाह ताला की रहमत अपनी मखलूक पर कैसी और किस दर्जे में है, ठीक है? लेकिन अगेन वही कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ही का अपना कलाम, उसी से पता चलता है कि 99 हिस्से भी जो रखे हुए हैं कयामत के अंदर वो एतमाद करने वालों के लिए रखे, इनकार करने वालों के लिए नहीं रखे हुए कि वो रहमत जो है वो काफिरों को भी उठा करके फिर जन्नत में डाल देगी, नहीं, ईमान वालों के लिए, कि ईमान वालों की जो गलतियां होंगी, कोताहियां होंगी और गुनाह होंगे जो कि उसमें भी कोई कमी नहीं होती, बहुत ज्यादा गुनाह ईमान वालों से हो जाते, तो उनको अल्लाह ताला जो है वो माफ भी करेंगे। और दूसरी क्या कि एक तो है ना कि गलतियों को माफ कर दिया और जन्नत में दाखिला अता फरमा दिया, ईमान की वजह से जन्नत में दाखिला अता फरमा दिया, फिर उसके बाद अमाल हमारे कितने होंगे, बहुत थोड़े से अमाल होंगे, ठीक है? क्योंकि हमारी उम्र कितनी, किसी की 60 साल, किसी की जो है वो 80 साल, किसी की 90, किसी की 20-22 साल, राइट? तो कितने अमाल कर लिया आपने, कितनी नमाजें पढ़ ली होंगी उस छोटी सी उम्र के अंदर, राइट? तो जन्नत तो बहुत बड़ी है और हमारी नमाजें तो बहुत थोड़ी, हमारे सदका खैरात बहुत थोड़े, हमारी जो जिक्र अजकार है बहुत थोड़े, जन्नत तो बहुत बड़ी। तो अगर हमें हमारे आमाल के बकदर जन्नत मिलती तो फिर तो सारी जन्नतन खाली रहना था फिर, राइट? सारी जन्नतन फिर खाली ही रहना था, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला की रहमत इतनी होगी कि थोड़े थोड़े से आमाल के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा अता फरमाएंगे, बहुत बहुत ज्यादा अता फरमाएंगे, बल्कि अच्छा और क्यों अता फरमाएंगे, चलो भाई तुम्हारी नीयत तो थी ना ज्यादा अमल करने की, कर नहीं सके क्योंकि तुम बेचारे कमजोर थे, तुम जो है वो और भी तुम्हारे ऊपर मसरूफियात थी, ठीक है, और भी जो है वो तुम्हारे ऊपर मैंने जो है वो कुछ बीमार हो जाता था, किसी के जो है वो घर के अंदर तकाजे ऐसे आ जाते थे, किसी के अंदर कुछ हो जाता था, कोई गफलत का शिकार हो जाता था, कोई बुरे दोस्तों की वजह से जो है वो गुनाहों में पड़ जाता था, इस वजह से उसका वक्त जाया हो जाता था, अमाल नहीं कर सके, लेकिन तुमने एतमाद किया मेरे नबी के ऊपर, इनकार नहीं किया मेरे नबी की किसी बात का, तो चलो मैं तुम्हारी नीयत की बुनियाद पर तुम्हारे छोटे से अमल को मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, राइट, इतना सवाब हो गया, अब जन्नत की ये वाली नेमत तुम्हें मिल जाएगी, जिसकी के असल प्राइस जो थी वो मिलियन नेकियां थी, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक नेकी थी, इस नेमत के बदले में तुम्हारे पास सिर्फ एक नेकी थी, लेकिन इसकी प्राइस जो थी वो 1 मिलियन नेकियां थी, तुम्हारी नीयत की वजह से तुम्हारी इस एक नेकी को मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन कर, और तुम्हें वो वाली मैंने नेमत प्राप्त करवा, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की रहमत के 99 हिस्से जो हैं वो माफी में भी अप्लाई हो रहे होंगे और जन्नत की नेमतों के 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 मुस्तहिक बनने के अंदर भी अप्लाई हो, ठीक है। मैं ये बात हम इस वजह से समझा रहे हैं कि आजकल के जमाने में जो ये फितने दज्जाल चल रहा है ना, तो उस फितने दज्जाल के सर चढ़ के बोलने की वजह से इस वक्त एक आम मुसलमान के दिल में भी ये शुभो पैदा हो रहा है कि काफिर को भी जो है वो जन्नत मिल जाएगी, यानी जिसका के इख्तिताम जिसकी मौत कुफर पे होगी वो भी जन्नत में जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्लाह की रहमत जो है वो 99 हिस्से इंतजार कर रही है। अब 99 हिस्से जो है वो मोमिनीन के लिए तो इतने ज्यादा हिस्से जो है वो अल्लाह की रहमत के, तो मोमिन क्या करेंगे भाई, उनको क्या जरूरत है अल्लाह की रहमत की, राइट, उनको क्या जरूरत है अल्लाह की रहमत की, वो तो वैसे ही जो है वो जन्नत में चले जाएंगे और बड़े बड़े मकामात हासिल कर लेंगे ईमान वाले, तो अब जो है वो रहमत तो 99 हिस्से अल्लाह ताला की है, तो वो तो रहमत यानी खाली रह जाएगी, फारिग रह जाएगी, ठीक है ना, तो इस किस्म के वसवसे शैतान जो है वो दिलों में डाल करके मीडिया के जरिए से और तालीमी निजाम के जरिए से ऐसे वसवसे मुसलमानों के दिलों में डाल करके उनको किस बात के ऊपर कायल कर रहा है। देखो 99 हिस्से अल्लाह की रहमत जो है ना ये काफिरों को भी जन्नत में पहुंचाएगी, मुसलमान कोई जन्नत के ठेकेदार कोई थोड़ी है, राइट, मुसलमान कोई जन्नत के ठेकेदार कोई थोड़ी है, अल्लाह की रहमत तो काफिरों को भी जो है वो जन्नत में ले जाएगी, ये शैतान के वसाविस हैं जो कि इस दौर के अंदर बहुत खुल करके जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि दजल मीडिया के जरिए से और तालीम के जरिए से इतना ज्यादा फैला दिया गया है, इतना ज्यादा जो है वो राइज हो गया है कि अब उसके सामने बंद बांधने वाला कोई नजर नहीं आता, समझाने वाला कोई नजर नहीं आता, क्योंकि सब जो है वो जाकर के इस तरह की बातें पढ़ भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं मीडिया के ऊपर और जो है वो किताबों के अंदर और जहाँ कहीं भी उनको मिलता है, इस किस्म की बातें सारी की सारी सुनने को मिल रही है, ठीक है, तो ये जो है वो आज का मुसलमान जो है ना उसके दिल में ये शुबे पैदा हो रहे हैं, इस वजह से आपको ये बात समझा दी, नहीं 99 हिस्से जो है वो सारे के सारे ईमान वालों के लिए होंगे और वो ईमान वालों के लिए और ईमान वालों को उनकी जरूरत होगी, ईमान वालों को अल्लाह के रहमत के 99 हिस्सों की जरूरत होगी उनके गुनाहों के बख्शवाने की वजह से और जन्नत के दर्जात पाने के लिए, ठीक है, तो ये मत कर कोई समझ ले कि नहीं जी वो 99 हिस्सों की वजह से अब जो है वो ईसाई यहूदी और हिंदू और भी जो है होंगे ना वो भी सारे जन्नत में जा रहे होंगे। अच्छा आगे लिखते हैं कि और ये जाहिर है कि कोई इंसान बल्कि फरिश्ता भी अल्लाह जल्ला शानहू के शायान शान इबादत व ताअत तो कर नहीं सकता, अल्लाह की शायान शान इबादत व ताअत नहीं कर सकता, ये बिल्कुल इसका मतलब ये भी है कि जन्नत की नेमतों के शायान निशान हम इबादत नहीं कर सकते, दोनों बातें एक ही मतलब रखती हैं, अल्लाह की बुजुर्गी के शायान निशान हम इबादत नहीं कर सकते और अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है उसकी नेमतों के शायान निशान यानी जन्नत की फलानी नेमत जो है ना, ये बिलियन नेकियों के बराबर की नेमत है, ये इसकी प्राइस बिलियन नेकियां है। हमारी जो इबादत है वो 20 नेकियों के बराबर, 200 नेकियों के बराबर, तो भाई वो जन्नत की वो वाली नेमत हमें कैसे मिलेगी फिर? हमने तो उसके शान शान इबादत करी नहीं। ठीक है, उसको ऐसे भी समझे इस वाली बात को, जन्नत की नेमतों के शान निशान हमारी इबादतें नहीं है, हो ही नहीं सकते। और जो अताअत खिलाफ शान हो वो दुनिया के लोगों की नजर में तो बजाय सबब इनाम होने के बायस नाराजगी समझी जाती है। भाई आपने शायन शान यानी काम क्यों नहीं किया? ठीक है, या ये कि आप पहुंच गए, आप जाए ना किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाए या किसी घर के मालिक के पास जाए जिसने अपने घर के ऊपर जो है ना वो प्राइस टैग लगाया हो कि मेरा ये घर जो है वो 10 करोड़ रुपए का घर है, आप 100 रुपए लेकर के उस पहुंच जाए, मुझे 100 रुपए में ये घर चाहिए, मुझे आपका घर जो है वो 100 रुपए में खरीदना है, उसने 10 करोड़ की जो है वो कीमत लगाई हुई है, तो अब वो क्या करेगा आपको देख करके? वो नाराज होगा ना आपके ऊपर, या हंस करके आपको जो है वो बाहर निकाल देगा, धक्के दे करके, क्या मेरे दिमाग खराब करने के लिए आओगे? अगर आप नहीं टलेंगे तो फिर वो अपने नौकरों से कहेगा भाई इसको निकालो बाहर, ये 10 रुपए में मेरा 10 करोड़ का घर खरीदने के लिए आया है। तो दुनिया के अंदर ये होता है। ठीक है, तो ये तो बायस नाराजगी होता है ना, ये वाली हरकत। ये हाल तो हमारी ताअत और इबादत और हसनात का है, हक तआला शानहु की बारगाह आली की निस्बत से देखा जाए तो सय्यात से कम नहीं है, गोया कि ये इंसल्ट है, सय्यात से कम नहीं। सय्यात का मतलब तो गुना होता है, लेकिन यहां पर बात समझने के लिए इसके लिए हम इंसल्ट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, गोया कि ये तो इंसल्ट है अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला की शान के ऊपर ना, कि हम जो है वो अपनी नेकियां, ये गंद आप जो है वो अल्लाह ताला की दरबार में पेश कर रहे हैं आप। फिर इस पर मजीद ये कि हकीकी सय्यात और मासी से भी कोई बशर खाली नहीं है। हकीकी सय्यात यानी एक तो हो गया ना कि भाई आपने नेकी तो करी, लेकिन वो नेकी इतनी कम दर्जे की नेकी थी कि यू डोंट डिजर्व जन्नत के नेम से, ठीक है ना, लेकिन फिर भी नेकी तो करी थी ना। एक होता है कि हकीकत हकीकत में गुनाह किए हैं, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि मजीद ये है कि हकीकी गुनाह और मासी से, जो कि गुनाह ही के लिए एक दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, कोई बशर खाली नहीं है, इल्ला मन असमहुल्लाह, सिवाय उसके जिसको कि अल्लाह ताला ने बस बचा लिया हो किसी वक्त गुनाह से, वरना तो हम सब तो गोया के गुनाह की तरफ दौड़ रहे होते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं ना गुनाह, तो इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा के हमें बचा लिया गुनाह से। ठीक है, एक भाई जो है वो बताने लगे, खैर क्या बताएं आपको, खैर कहने लगे, बता उसको थोड़ा सा चेंज करके, अभी चंद दिन पहले की एक बात सुनाई किसी ने, कि उनका इरादा था गुनाह करने का, इरादा किया नहीं, हमें आके बता रहे हैं क्योंकि शेर का तो ताल्लुक ऐसे ही होता है, तो आके बता रहे हैं कि जी इरादा किया था कि मैं जो है ना अब जाके गुनाह करता हूं, अल्लाह ताला ने मेरे रास्ते पर जो है वो सांप भेज दिए, सामने सांप आ गए, और ऐसी जगह थी जहां पे सांप आ ही नहीं सकते, सांप आ ही नहीं सकते, वहां पर कोई रास्ता नहीं था सांपों के अंदर आने का, और सांप कहीं दूर दूर तक कोई गुमानी नहीं, ऐसी जगह थी वो। ठीक है, कहते हैं मेरे नजरों के सामने सांप आ गए और मेरी तो यानी क्या फिर हाल होगा आपका अगर आपके नजरों के सामने जो है वो दो सांप आ जाए तो? ठीक है, तो फिर हमने कहा फिर आपको वो गुनाह का ख्याल रहा? कहते नहीं हजरत, वो तो होश ही उड़ गए हमारे वो तो कई दिन, बल्कि अभी भी अगर वो बात याद आती है तो यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हवास जो है ना वो काबू में नहीं रहते जब वो वाकया याद आता है। मैंने कहा देखिए अल्लाह ताला इस तरह से मेहरबानी फरमाते हैं, आपकी नीयत थी ना, ओवरऑल आपकी नीयत होती है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाही ताल्लुक बनाया है तो क्यों बनाया है, गुनाहों से बचने के लिए बनाया है ना। ठीक है, तो अल्लाह ताला ऐसे मेहरबानी फरमाते हैं, ऐसे हिफाजत फरमाते हैं। ठीक है, तो वही है कि इन्ना मन असमहुल्लाह, कि इन हालात में, अच्छा अब कहते हैं कि इन हालात में तकाजाए इंसाफ तो ये था कि कोई भी अजाब से नहीं बचता, लेकिन हो यह रहा है कि हर इंसान पर अल्लाह ताला की नेमतें हर वक्त बरस रही हैं। ये सब उसी रहमत का नतीजा है जो परवरदिगारे आलम ने अपने जिम्मे लिख ली है। ठीक है, यानी हमारे तो अमाल इतने बुरे हैं, गुनाह हैं इतने बुरे हैं कि दुनिया ही में हमारे ऊपर अजाब की बारिश होनी शुरू हो जाए, लेकिन क्यों नहीं होती? ठीक है, इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, बहुत अल्लाह का हक अदा करने वाले हैं, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत है। ठीक है, अब ये सारी बातें जो है ना, ये कहाँ से मिलती हैं? ये कुरान अजीम शान से मिलती है। ठीक है, कुरान की ही तफसीर है ना ये जिसको कि हम पढ़ रहे हैं। तो कहने का मकसद क्या कि जो कुरान मजीद से नहीं जुड़ता है, उसको नहीं पढ़ता है, उसको नहीं सीखता है, तो वो फिर अपनी अकल से, ओहो मैंने अल्लाह के खिलाफ ये काम कर लिया, अब तो मैं मारा गया, अब तो जो है ना बस कोई मायूसी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे लिए। ठीक है भाई, कुरान अजीम शान में अल्लाह ताला ने रहमत की सारी बातें कंफर्म 100% कंफर्मिटी के साथ लिखी हुई है ना। बाकी किसी मौलवी साहब ने कोई बात बताई, किसी ने कोई बात बताई, तो अब आप कहें हाँ नहीं मौलवी साहब तो बस मुझे ऐसे दिल रखने के लिए बातें कर रहे हैं। मौलवी साहब ने कौन सा अल्लाह ताला से बात करके आए हैं? ये मौलवी साहब कौन सा जो है ये जन्नत को देख करके आए हैं? तो शैतान इस तरह की बातें बड़ा आसानी से डाल सकता है, बस मुझे ऐसे ही बस खुश करने के लिए ये बातें कर रहे होंगे। भाई अल्लाह का कलाम तो बिल्कुल बुनियादी चीज है ना, कि जिसके ऊपर यकीन रखना ये मुसलमान होने की अलामत है। मौलवी साहब पे यकीन रखना तो मुसलमान होने की बुनियाद नहीं है कि मौलवी साहब की बात पे यकीन रखा तब मुसलमान होंगे, नहीं मौलवी साहब की बात मानी तो मुसलमान नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, बात मानने से फायदा होता है वगैरह, लेकिन कुरान के ऊपर बात की बात पर यकीन करना, ये तो मुसलमान के लिए 100% लाजमी है। तो जो कुरान को पढ़ेगा, कुरान को समझेगा, तो वो अगर मुसलमान है तो उसको तो फिर अल्लाह ताला की बात, वो तो ये दिल में शैतान बात भी नहीं डाल सकता ना कि अल्लाह ताला बस मुझे बहलाने के लिए बातें कर रहे हैं, या बस ये तो बस बहलाने के लिए बस इसमें ये बातें लिख दी गई हैं, हकीकत में ऐसी कोई रहमत वहमत नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुरान मजीद के अंदर तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो कुरान मजीद को अवॉइड करके दीन के ऊपर नहीं चल सकता बंदा। आगे फरमाते हैं कि तौबा से हर गुनाह माफ हो जाता है। इसके बाद रहमत कामिला की तशरीह एक जाब्ते की सूरत में इस तरह बयान फरमाई कि अन्नहु मन अमिला मिनकुम सुअं बिजहालतिन थुम्मा ताबा मिन बादिही व असलहा फअन्नहु गफूरुर रहीम। यानी जो आदमी जहालत से कोई काम कर बैठे और उसके बाद वो तौबा कर ले और अपने अमल को दुरुस्त करे, तो अल्लाह ताला बहुत मगफरत करने वाले हैं, उसके गुनाह को माफ फरमा देंगे, और बहुत रहमत करने वाले हैं कि सिर्फ माफी पर किफायत नहीं होगी बल्कि इनामात से भी नवाजा जाएगा। तो जो मानने वाले होते हैं ना, इसरार करने वाले, तस्दीक करने वाले, ठीक है, यानी फिर एतमाद करने वाले, वादे जहां पर आएंगे तो वहां पे एतमाद का लफ्ज इस्तेमाल होगा। ठीक है, इकरार का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि हाँ भाई आपने जन्नत के बारे में बताया कि जन्नत ऐसी 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 है, तो हम इकरार करते हैं कि आपने सही कहा है, हम दिल से भी तस्दीक करते हैं कि आपने सही कहा है, लेकिन जब वादों की बात आएगी तो फिर वहां पर तो वादे के लिए उर्दू जुबान में एतमाद का लफ्ज। ठीक है, बहरहाल तो जो भी एतमाद करने वाले, इकरार करने वाले, तस्दीक करने वाले जो होते हैं ना, तो उनके साथ फिर ऐसे ही मामला किया जाता है कि उनसे गलती हो जाती है, लेकिन मान तो रहे हैं ना तो माफ कर दें। बहुत ही सादा सी मिसाल देते हैं हमारे बड़े कि बाप की औलाद होती है, तो वो औलाद बुरे से बुरा भी काम कर देना तो बाप जो है वो ठीक है, उसकी इसलाह के लिए उसको सजा वजा भी दे सकता है, डांट पाट भी सकता है, लेकिन उसको अपनी औलाद की तरह से बहरहाल रखता है, और उसको गलतियों के साथ जो है ना वो माफी भी हो जाती है। अगर माफी मांग रहा है तो औलाद को बाप माफ कर देता है, माँ माफ कर देती है, लेकिन कोई औलाद कहे कि आप मेरे बाप है ही नहीं, आप मेरी माँ है ही नहीं, ठीक है ना, और वो बिल्कुल उसके ऊपर बजिद हो जाए कि नहीं आप मेरी माँ है ही नहीं, मैं आपको मानता ही नहीं हूं अपनी माँ, आपको मानता ही नहीं हूं अपनी बाप अपना बाप, ठीक है, तो फिर उसके साथ तो यही होता है कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन जब तुम मान ही नहीं रहे तो फिर अब उसके लिए तो कुछ फवायद होते हैं, ठीक है। तो मानने वालों के साथ ऐसा नहीं होता। इस आयत में लफ्ज जहालत से बज़ाहिर किसी को यह ख्याल हो सकता है कि गुनाह की माफी का वादा सिर्फ इस सूरत में है कि जबकि नावाकफियत और जहल के सबब कोई गुनाह से जुड़ जाए, जानबूझकर गुनाह करने वाला इस हुक्म में दाखिल नहीं है। यानी ये जो लफ्ज जहालत इस आयत में इस्तेमाल हुआ है ना, तो इससे किसी को हो सकता है कि भाई अच्छा, जहालत का मतलब तो ये होता है कि उसको पता ही नहीं था कि ये गुनाह का काम है, तो इस वजह से उसने कर लिया। तो ऐसे मासूम शख्स को जिसको पता ही नहीं था कि ये गुनाह है, तो उसको माफ कर देना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फरमा रहे नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जहालत से यहां पर मुराद अमले जहालत है, यानी ऐसा काम कर बैठे जैसा नतीजे से जाहिल व बेखबर किया करता है। ठीक है, क्या मतलब? कि जैसे हम कहते हैं ना उर्दू जुबान में कि कोई शख्स बड़ा अकलमंद हो, पढ़ा लिखा हो, उसको फायदे और नुकसान की चीजों का पता हो, ठीक है, तो उस शख्स को हम समझते हैं ना कि हाँ भाई ये है, पढ़ा लिखा है ना, इसको पता है सही का गलत का पता है, नुकसानदेह फायदेमंद का पता है। अब अगर वो कोई नुकसानदेह काम कर ले तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं कि भाई हैं तो आप बड़े पढ़े लिखे, हैं तो आप बड़े अकलमंद, लेकिन काम आपने जाहिलों वाला किया है, राइट? काम आपने जाहिलों वाला किया है आप जाहिल नहीं, लेकिन काम आपने जाहिलों वाला किया है। बिल्कुल वही चीज यहां पे मुराद है, ठीक है, कि हैं तो आप इल्म वाले कि आपको पता है गुनाह क्या होता है और आपको पता है नेकी क्या होती है, लेकिन अमल आपसे जो है ना वो ऐसा हो गया है गोया कि आपको नहीं पता था, गोया कि आप जाहिल थे, हालांकि आप जाहिल है नहीं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे मुराद अमले जहालत, के नतीजे से जाहिल और बेखबर किया करता है, यानी इसको पता ही नहीं होता कि इसका नुकसान है, यानी इसका इस काम को करूंगा तो इसका नतीजा नुकसान में निकलेगा, ठीक है, हालांकि उनको पता था, फिर भी उन्होंने अमल वैसा कर लिया। ये जरूर नहीं कि वो वाकई में जाहिल हो, इसकी तायीद खुद लफ्ज जहालत से भी होती है, कि यहां लफ्ज जुहल की बजाय जहालत का लफ्ज शायद इसी की तरफ इशारा करने के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जुहल तो इल्म का मुकाबिल है, ठीक है। अब ये माशाल्लाह हमारे मुफस्सरीन और मशायख जो हैं वो चूंकि अरबी जुबान की गहराई में उन्होंने उलूम हासिल किए होते हैं, अब वही वाली बात हमें बता सकते हैं कि लफ्ज जुहल जो इस्तेमाल होता है ना वो इल्म के मुकाबले में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और जहालत का जो लफ्ज है ये हिल्म और वकार के मुकाबले में इस्तेमाल होता है, हिल्म और वकार के मुकाबले में इस्तेमाल होता है। यानी लफ्ज जहालत मुहावरात में बोला ही जाता है अमली जहालत, यानी जब कोई बेसब्री का मुजाहरा करे ना तो उसके लिए लफ्ज जहालत इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, बेसब्री का मुजाहरा करे या यानी कोई नीच किस्म की हरकत कर दे, हालांकि है वकार वाला आदमी लेकिन कभी कोई नीच किस्म की हरकत करे तो उसके लिए जहालत का लफ्ज इस्तेमाल, जोहल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा, जहालत का लफ्ज इस्तेमाल, ठीक है। अब ये तो बड़ी गहराई है ना, ये तो हम जैसा बंदा तो इस तक पहुंच ही नहीं सकता माशाल्लाह। अगर गौर किया जाए तो गुनाह जब भी किसी से सरजद होता है तो इस अमली जहालत ही की वजह से होता है। इसीलिए बाज़ बुजुर्गों का कौल है कि जो शख्स अल्लाह और रसूल के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है वो जाहिल है, मुराद इससे यही अमली जहालत, ठीक है। यानी यहाँ पर ईमान वालों की बात हो रही है कि जो भी ईमान वाला अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है उसको जाहिल कहा जाता है। इसका मतलब यही नहीं होता कि उसको अल्लाह उसके रसूल के हुक्म का पता नहीं है, बल्कि इससे यही अमली जहालत मुराद है, ना वाकिफ और बेइल्म होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुरान करीम और अहादीस सहीहा की बेशुमार नुसूस इस पर दलालत करती हैं कि तौबा करने से हर गुनाह माफ हो सकता है, ख्वाह गफलत और जुहल की वजह से सरजद हुआ हो या जानबूझकर शरारत नफ्स और इत्तेबाए हवा की वजह से। अब इससे एक और भी बहुत, यहाँ तक ही हम आज की क्लास खत्म कर देंगे, वैसे 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं, इससे एक और भी तरफ इशारा मिलता है, ये जो पूरी डिस्कशन यहाँ पे हो रही है ना, उससे एक और भी बड़ा अहम इशारा मिलता है। वो क्या है? वो ये है कि देखें, ईमान वाले से जो गुनाह होते हैं वो जुहल की वजह से नहीं होते हैं, वो जहालत की वजह से होते हैं। जुहल का मतलब क्या कि उसको इल्म ही नहीं था, ठीक है, और जहालत का मतलब क्या कि इल्म तो उसको था लेकिन अमल के वक्त उससे गलती हो गई, ठीक है, तो उसने अमली जहालत कर ली। तो इससे क्या इशारा मिलता है कि जो गुनाह और सवाब का इल्म है वो तो ईमान वाले के पास होता ही है, होना ही चाहिए। गुनाह और सवाब का जो इल्म है कि भाई कौन सा काम गुनाह का है और कौन सा काम जो है वो सवाब का है, तो इसका इल्म तो हर ईमान वाले को होना चाहिए। तभी तो फिर उससे जो गलती होती है वो अमली जहालत होती है, वो जोहल नहीं होता। जोहल तो उस वक्त होगा ना जब उसको पता ही नहीं कि सवाब क्या होता है और पता ही नहीं कि नेकी क्या होती है, ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि दीन का इल्म हासिल करना, फराइज का इल्म हासिल करना, ठीक है, ये ईमान के साथ लाजिम है, ठीक है। हम उसको मतलब इतना तो कह सकते हैं ना कि भाई ये किस किस्म के हम ईमान वाले हैं कि हमें फराइज का और जो है वो जो अल्लाह ताला की नाफरमानियां हैं पता ही नहीं, नाफरमानियां कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि नहीं ये कोई नाफरमानी नहीं है, ये तो कोई नेकी का काम समझ के इसको कर रहे हैं या ऐसी कोई न्यूट्रल किस्म का काम समझ के इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये इल्म कैसे हासिल करेंगे, ये इल्म कब हासिल करेंगे? हमारा तो तालीमी निजाम सारा ऐसा है कि दीन का इल्म का मतलब क्या है कि जी बस वो कारी साहब के पास बिठा दिया और जो है वो चंद चीजें जो है वो बस रट्टा लगा दी और बस फिर उसके बाद जो है वो कोल्हे के बैल की तरह जो है ना, कोल्हे के बैल की तरह जो है वो जुद गए दुनिया का इल्म हासिल करने के अंदर। अब टाइम ही कोई नहीं है कि भी दीन का भी कोई इल्म हासिल किया जा सके, ठीक है ना। अब जो है ना वो जब बड़े हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे सारे कामों से, तो अब जो है वो आलमा कोर्स, अब आलमा कोर्स क्या, वो आलमा कोर्स के अंदर भी ये सारी चीजें जो है नहीं पता लगनी है, पता नहीं वो सर्फ नाफ पढ़े चले जा रहे हैं और फलानी चीजें पढ़े चले जा रहे हैं लेकिन हलाल और हराम का इल्म जो है वो नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो भाई ये किस किस्म के ईमान वाले हैं भाई, सारी जिंदगी जो है वो दुनिया का इल्म हासिल करने में जुटे रहे, एम फिल भी कर दिया, PhD भी कर लिया और जो है वो फिर करियर के अंदर मजीद इल्म हासिल किए चले जा रहे हैं और हलाल हराम का इल्म ही नहीं, ठीक है। तो ये तो बड़ी तब्दीली बड़ी है ना कि भाई आप पहले जो है वो दीन का इल्म तो हासिल करें ना, आप दुनिया के इल्म जरूरत के तहत वो भी हासिल कर लें, लेकिन दीन के इल्म को छोड़ करके दुनिया का इल्म हासिल करना इसकी तो गुंजाइश नहीं बनती है। अल्लाह ताला बाद की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।